Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharvediya Kaivalya Upanishad ka 19वां mantra hai. पहले उच्चारण कर लें. मये सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्. मई एव सकलम जागत, ये तत्वज्ञ की अनुभूति है. तत्वज्ञ अनुभव अपना बता रहा कि मई एव सकलम जातम, मुझ में ही सारा ये जो जगत है उत्पन्न हुआ. सकलम, सकलम का अर्थ दोनों होता है. सकलम मतलब संपूर्णम, चराचर जगत, और दूसरा अर्थ है कलाया सहित सकल, कला के साथ. ये जो जगत है वह कला, कला मतलब विद्या. अविद्या सबकी जननी है, तो विद्या के साथ सब परमात्मा में ही उत्पन्न हुआ. मई सर्वम प्रतिष्ठितम, और उसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है. मई सर्वम लयम याति, और उसमें सब कुछ विलय को प्राप्त होता है. वही ब्रह्म अद्वय है, अस्म्यहम, और वही मैं हूं. ये सुनने के बाद कुछ हैरानी होती कि नहीं आपको? ये पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा सागर, उसकी गहराई, हिमालय की ऊंचाई, वन पर्वत चराचर जगत, आप में उत्पन्न कैसे होगा? संभव है? जब तक हम व्यक्ति भाव में रहते हैं, पिंड भाव में, व्यक्ति मतलब पिंड भाव में, शरीर में, जब तक देहाभिमान है तब तक पे संभव नहीं है. जिस प्रकार एक छोटा सा सागर का बूंद यह नहीं कह सकता है कि सागर मुझसे उत्पन्न हुआ, सागर वो बूंद छोटा सा है ना, है तो सागर का अंश ही, पर बूंद ऐसा दावा नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि मुझ में लहरें उत्पन्न होती हैं, मुझ में स्थिर है, मुझ में विलय हो सकता. बूंद का क्या सामर्थ्य? परंतु वही बूंद जब सागर में विलय हो जाए तो सब कुछ कह सकता. ऐसे जब तक ये जो जीव है यह देहाभिमान करता है, इस पिंड में है, हम लोग पिंड में है, पिंड मतलब 3.5 हाथ का जो यह शरीर, इसका नाम पिंड है. तो जब तक पिंड में हम बैठे हैं ना, जैसे जब तक बूंद अलग है सागर से, तो बूंद में कुछ भी क्षमता नहीं कि सागर की, सागर कितने बड़ी जो तरंगे हैं, लहरें हैं, उफान है, वह संभव नहीं बूंद में. तो बूंद के समान जब तक ये जीवात्मा देह में अभिमान करके बैठा है, तब तक यह नहीं कह सकता है कि मुझ में जगत उत्पन्न होता, मुझ में विलय होता, मुझ में स्थिर होता. और जैसे ही यह पिंड भाव से ऊपर हो जाता है, या यूं कहो कि पिंड का विलय कर देता है सागर के समान परमात्मा में, भूमा अंता में, एक तरफ है सीमित अहंता, दूसरी तरफ है भूमा अहंता. सीमित मतलब परिच्छिन्न, संकीर्ण, एक एक खंड में जो अभिमान है इसका नाम है सीमित अहंता, और दूसरा अपरिच्छिन्न अहंता है भूमा अहम ब्रह्मास्मि। तो जब हम अपने सीमित अभिमान का विसर्जन कर देते, जिस प्रकार जब बूंद या एक लोटा जल जब सागर में मिल जाता है तो सागर में हो गया, और वह यह कह सकता है कि हमारे में ही तरंगे लहरें उठ रही हैं, हमारे में स्थिर है और मुझ में विलय हो रही। ऐसे जब हम लोग सीमित अहंता का विसर्जन कर देते भूमा अहंता में, व्यापक अहंता में, तो आप कह सकते कि मुझ में सारा प्रपंच उत्पन्न हो रहा, मुझ में स्थिर, मुझ में विलय हो रहा। सोना से सब कुछ बनता है, सोने से ही आप रावण को बना लो, सोने से ही राम जी को, सीता जी को, हनुमान जी को चित्र बनाते ना। सोने के रावण को आपने देखा, और देखते देखते जो सोने का रावण जो चलचित्र है वह सोने की सीता जी का अपहरण कर रहा। जो 10 सिर रावण के हैं वो 10 सिर वाले सोने के रावण के चित्र को देखकर आप मन में प्रसन्नता होगी कि क्रोध आएगा? क्या होगा? क्रोध आएगा ना। देखो हमारी भगवती जगत जननी सीता जी का इस सोने के जंगल में से ऐसे वस्त्र पर चित्र बनता है ना, वस्त्र पर, कागज पर, तो मानो वस्त्र कागज की जगह सोने का सब कुछ बना, सोने का ही जंगल हो, सोने का सब कुछ हो, रावण भी सोने का। अपहरण करके ले जाए तो बड़ा क्रोध आएगा, और जब हनुमान जी अपने सोने के गदा से लंका पर रावण पर प्रहार करते हैं तो बड़ा मजा आता है कि अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। पर वास्तव में देखो तो सोना को छोड़कर कुछ भी नहीं, स्वर्ण से ही जंगल का निर्माण हुआ, स्वर्ण से रावण बनाए, स्वर्ण से सीता जी, स्वर्ण से राम जी। आकृतियां भिन्न भिन्न है, क्रिया भी भिन्न भिन्न है। सोने के राम को देखकर बड़ी प्रसन्नता, सिर हमारा झुक जाता, प्रसन्नता आती है, और सोने के रावण को देखा तो आग बबूले हो गए। है तो सोना ही, परंतु वह जो भिन्न भिन्न आकार प्रकार हैं, एक रावण का नाम अलग, उसकी आकृति अलग, 10 सिर रावण को हैं, भगवान राम को एक सिर और धनुष बाण हाथ में। तो जिस प्रकार से स्वर्ण के रावण को देखकर क्रोध आया और स्वर्ण के राम जी को देखकर माथा श्रद्धा से झुक गया, पर आकृतियों के भेद से उस उपादान सोने में फर्क नहीं पड़ता। सोने में ही सब कुछ कल्पित है, सोने से सब कुछ उत्पन्न हुआ और सोने में स्थिर है, और जब गर्म करके पिघलाएंगे तो स्वर्णमय हो जाएगा, सोने में विलय हो गया, और अंत में सोने के तादात्म्य को प्राप्त कर लिया। चारों उसी में है, सोने से उत्पन्न हुआ, सोने में स्थिर है, जिस समय आकार प्रकार दिखाई दे रहा, और विलय होने के बाद स्वर्णमय हो गया, और फिर तादात्म्य को प्राप्त हुआ, अपना नाम रूप छोड़कर के स्वर्ण रूपता को हो गया, तो वह सोना कह सकता है कि मुझ में कुछ भी नहीं। सृष्टि के काल में सब कुछ सोने में था और विलय काल में कुछ भी नहीं। ऐसे जो साधक ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है वह कहता है कि मुझ में ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, मुझ में प्रतिष्ठित है, मैं सर्वम लय में आती, मुझ में विलय को प्राप्त होता है, वही में ब्रह्म अद्वय एक में वह अद्वितीय हूं। मिट्टी का भी दृष्टांत प्रसिद्ध है, मिट्टी से जैसे घड़ा उत्पन्न हुआ, मिट्टी में स्थिर है, टूटने फूटने के बाद मिट्टी मय हो गया, परंतु मिट्टी का घड़ा बने चाहे कुछ भी बने, मिट्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सोने का रावण बनाओ, चाहे राक्षस बनाओ, चाहे आप जो है देवता बनाओ, चाहे राम जी बनाओ, सोने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एक मेवा द्वितीय जो आत्मा है, इन आकार प्रकार से उसमें किसी प्रकार का हलचल क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। केवल सृष्टि काल में नाम रूप भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे ही सृष्टि काल में देवता दानव मनुष्य अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं, अनेकता है, और विलय में कुछ नहीं होता। सृष्टि के पहले भी एक मेवा द्वितीय था। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि व तत्र का परिदेवना। सृष्टि के पहले भी अव्यक्त, अंत में भी अव्यक्त, केवल मध्य काल में ये आकृतियां आकार प्रकार दिखाई दे रहे। इसलिए ज्ञानी का अनुभव है कि एक में अद्वितीय मैं आत्मा ही हूं। आगे चलें, अद्वितीय पद है ना, एक में व अद्वितीय। तद ब्रह्मा द्वयम् अस्मि हम, वही मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं। इसके लिए सबसे बढ़िया सपने का दृष्टांत है। सपना हम लोग देखते हैं, पर सपना बड़ा ही रहस्यात्मक है। सपने में मन की दो शक्तियां हैं। एक मन की शक्ति है कि संस्कार उत्पन्न होना, पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति है संस्कारानुसार सृजन। दोनों शक्तियां। संस्कार मतलब कि जागृत काल में इंद्रियों के विषय के सन्निकर्ष से जो अनुभव हुआ, उससे मन में संस्कार हुआ। मन में दो गुण है, न्यायिक वैशेषिक मानते हैं, मन में मनस्त्व भी है, इंद्रियत्व भी है। तो मनस्तिन तो सुख दुख का अनुभव होता है, इंद्रियत्विन संस्कार पड़ता है। मन में न्यायिक दर्शन में दोनों धर्म माने, जैसे जीव में दोनों है ना। जीव में वेदांत मानता है कि अतृत्व वक्तृत्व है, जीव खाते भी है और बोलते भी है, दो इसके पास पावर है। जैसे किसी को ना गृह मंत्रालय भी मिलता है और क्या बोलते रक्षा मंत्रालय, ऐसे दो इसके पास मंत्रालय है, जीव के पास अतृत्व वक्तृत्व। ऐसे मन में भी मनस्त्व है और इंद्रियत्व। मनस्पिन सुख दुख का साक्षात्कार करता है, इंद्रियत्वेन संस्कार पड़ता है। तो देखिए, मन की पहली शक्ति है कि इंद्रिय जन्य अनुभव का संस्कार, और दूसरी शक्ति है कि संस्कार अनुसार सृजन। सृजन संस्कार के अनुकूल ही होता है, विपरीत नहीं होता है। जागृत में जैसा हमने संस्कार हमारे मन में पड़ा, सोचा समझा चिंतन किया विचार किया, सोने के बाद तद अनुकूल, तद अनुकूल मतलब संस्कार अनुकूल सृजन कर लेता है। तो स्वप्न दृष्टा के लिए केवल स्वाप्निक प्रपंच ही है, उसको उस समय न संस्कार समझ में आता है, न मन समझ में आता है, कुछ भी नहीं। जिस समय हम लोग सोकर सपना देखते हैं, उस स्वाप्निक काल में सपना देखने वाले को स्वप्न दृष्टा कहते हैं। तो स्वप्न दृष्टा पुरुष को न मन समझ में आता है, न संस्कार, इतना ही जानता है कि मैं स्वप्न प्रपंच देख रहा हूं, परंतु सब कुछ मन से ही सृजन हुआ। जो अचेतन मन है, उसी अचेतन मन में जो संस्कार की शक्ति है, उस संस्कारानुकूल सृजन कर लिया, साक्षी से प्रकाशित होने लगा। बड़े मजे से देखता है कि मैं राजा बन गया, यहां तो बेचारा टूटी फूटी झोपड़ी में सो रहा, भूखा प्यासा सो रहा, और सपने में उसने देखा कि मैं राजा बन गया, सभी मेरी आव भगत कर रहे, आदर सत्कार कर रहे, पर जैसे जगता है वैसे ही स्वाप्निक प्रपंच का विलय। तो स्वप्न दृष्टा ने जो सपने में देखा सृष्टि को और जगने के बाद सब विलय हुआ, उस मन से भिन्न कुछ भी नहीं। जगने के बाद केवल एक मनस्त्व रहता है, न संस्कार है, न स्वप्न प्रपंच है, न दर्शन, कुछ भी नहीं, केवल मन ही है। ऐसे ही जब हम स्वरूप में जग जाते हैं ना, तो एकमेव द्वितीय आत्मा ही होती। जिस प्रकार मन से ही सब कुछ सृजन हुआ, मन में स्थिर था, और जगने के बाद मन में विलय हुआ, कुछ भी नहीं बचा। जगने के बाद कुछ तो बचना चाहिए ना, सिंहासन पर, कुछ भी नहीं, वही झोपड़ पट्टी में। ऐसे जब हम लोग जग जाते हैं तो एकमेव द्वितीय आत्मा ही रहती है, उसमें किसी प्रकार का द्वैत प्रपंच नहीं रहता है। भेद तीन तरह से होता है, सजातीय, विजातीय, स्वगत, तीन भेद। भेद को, द्वैत प्रपंच को तीन भागों में विभक्त किया है। सजातीय भेद बोलते हैं, जैसे एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष से भेद सजातीय है। विजातीय बोलते हैं कि वृक्ष का पत्थर से भिन्नता है। स्वगत मतलब कि वृक्ष में जो पत्ते हैं, फल फूल टहनियां, उनका परस्पर भेद है। पर जो ब्रह्म है उसमें न किसी प्रकार का सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। स्वगत भेद मतलब कि सत्य चित आनंद या जो जीवात्मा परमात्मा का, हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा का, इन सब का कोई भेद नहीं, एक ही है। और सजातीय मतलब उसके समान जब दूसरा कोई है ही नहीं, तो भेद कैसे होगा। और विजातीय मतलब जड़ का, विद्या का, माया का ही भेद नहीं, क्योंकि वह भी उसमें कल्पित है। इसलिए अद्वैय कहा, अद्वैय अस्मि, मुझ में न सजातीय भेद है, जैसे एक वृक्ष का दूसरे से भेद, वैसा भेद नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न दूसरे कोई आत्मांतर है ही नहीं। और विजातीय भी नहीं है, जैसे कि वृक्ष से भिन्न पत्थर है, वैसा भेद नहीं। और स्वगत भेद भी नहीं है, सच्चित आनंद आदि का, जो सत है वही चित्त है, वही आनंद है। ऐसा नहीं समझना कि सत्य अलग, चित्त अलग, आनंद अलग। एक जगह बड़ा भारी प्रवचन चल रहा था, और भाग्य सबको कई बार मिल जाता है मन संचालन का। अक्सर सबसे कठिन काम है मंच मंत्री, मन संचालन। आजकल तो लोग विचार नहीं करते ना, ये बड़ी जिम्मेदारी। और यह उसी को मिलना चाहिए जो विद्वान, शास्त्र का मर्मज्ञ हो, दार्शनिक हो, सबको नहीं देना चाहिए। क्योंकि मन संचालन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी ने गलत बोला, शुद्ध बोला, सिद्धांत के विरुद्ध बोल दिया, तो उसका परिमार्जन करना, या उस वही कर सकता जो शास्त्रों का ज्ञाता हो। आजकल तो कोई भी करते हैं ना, तो एक बड़ी विद्वान बोले, तीन तीन चार चार विद्यालय चलाते, तो उन्होंने कहा देखो भाई, आप लोग 40 साल से वेदांत श्रवण कर रहे। सबने कहा हाँ महाराज, 40 हुआ, 25 हुआ, कोई बोला 10 वर्ष हुआ। बोले बड़े पुण्यात्मा, सब बड़े खुश हो गए। जरा तारीफ श्रोता की होती है ना, खुश हो गए। फिर बोले कि आप लोग सत्य का बिल्कुल अनुभव हो गया, निश्चय हो गया। अब बात रही चित्त की, चित्त मतलब ज्ञान, वह भी नीचे हो गया वेदांत सुनने के बाद, परंतु आनंद का अनुभव नहीं हुआ। सबने कहा महाराज, आनंद तो होता नहीं,